भो मित्रगणाः, स्वागतम् अस्तु। अद्य रविवारः, अत एव वयं रेडियो मधुबने पठामि संस्कृतस्य अद्य दिवसस्य श्रृङ्खलां पठिष्यामः। अद्य वयं कश्चित् द्वितीया विभक्तिप्रयोगानि तथा षष्ठी विभक्तिप्रयोगानि पठिष्यामः। पश्यतु, अर्थात् हे मित्रगण, आज हम कुछ द्वितीय विभक्ति के प्रयोग और षष्ठी विभक्ति के प्रयोग सीखेंगे। लेकिन इनकी खासियत ये है कि जो दो वाक्य हम पढ़ेंगे दोनों का अर्थ एक ही होगा और क्रिया जो लगेगी उसमें किस प्रकार अंतर होगा यह देखने वाली बात होगी। बालकः पुस्तकस्य अध्ययनं करोति। बालक पुस्तक का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर अध्ययन करता है, इस प्रकार एक लंबी क्रिया बन गई, अध्ययन करना। तो ऐसी स्थिति में षष्ठी का प्रयोग हुआ, पुस्तकस्य अध्ययनं करोति। लेकिन इस लंबी या दो शब्दों वाली क्रिया की जगह अगर हम थोड़ी सी शब्द कंजूसी करते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि संस्कृत में सरलता से संभव है, हिंदी में ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन अध्ययनम करोति के जगह पर हम कह सकते हैं अधीते। तो जब एक ही शब्द से हमारी क्रिया का वर्णन होगा तो ऐसे समय द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो हम कहेंगे बालकः पुस्तकम् अधीते, अर्थात बालक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ हमने पुस्तक को द्वितीय विभक्ति में ला दिया हिंदी में भी, और अध्ययन करता है की जगह हमने एक शब्द का प्रयोग किया, पढ़ता है, या एक शब्द वाली क्रिया का हमने उपयोग किया जो क्रिया है पढ़ना। इसी प्रकार मुनि ही सत्यस्य उपदेशम करोति। मुनि सत्य का उपदेश करते हैं। मुनि ही सत्यम उपदिशति। तो उपदेशम करोति की जगह जब हम उपदिशति कहेंगे तो सत्यस्य की जगह पर हम द्वितीय की विभक्ति लेंगे और कहेंगे सत्यम उपदिशति। इसी प्रकार कुछ और भी वाक्य हम देखते हैं। विक्रयिकः फलं विक्रीणीते, और विक्रयिकः फलस्य विक्रयणं करोति। कपिः वनं नाशयति। कपिः वनस्य नाशनं करोति। जनाः सज्जनानां प्रशंसां कुर्वन्ति। जनाः सज्जनान् प्रशंसन्ति। परीक्षकः गुणस्य परीक्षां करोति। परीक्षकः गुणं परीक्षते। तो हर जगह हमने करोति शब्द को जब हटा देते हैं और एक ही शब्द से क्रिया का वर्णन करते हैं तो द्वितीय विभक्ति आती है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। कुछ और वाक्य समझेंगे। अध्यापकः व्याकरणं अध्यापयति। अध्यापकः व्याकरणस्य अध्ययनं करोति। सः द्वारं पिदधाति, अर्थात वह द्वार को बंद करता है। सः द्वारस्य पिधानं करोति, वह दरवाजे को बंद करता है। सा वीणाम् अभ्यस्यति, सा वीणायाः अभ्यासं करोति। नायकः जनान् प्रोत्साहयति, नायकः जनानां प्रोत्साहनं करोति। छात्रः नियमस्य उल्लंघनं न करोति, छात्रः नियमान् न उल्लंघते। कर्मकरः सस्यं सिंचति, अर्थात किसान धान की सिंचाई करता है। कर्मकरः सस्यस्य सेचनं करोति, वही अर्थ हो गया कि किसान धान को सिंचन करता है। और अब हम दो ऐसे श्लोक सीखेंगे जिसमें नमः शब्द का उपयोग हुआ है। तो पहले भी हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि जब नमामि क्रिया का उपयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति लगती है, लेकिन जब नमः कहते हैं तो चतुर्थी विभक्ति लगती है, क्योंकि किसके लिए नमन करना है यह चतुर्थी विभक्ति से समझ में आता है। तो देखते हैं ऐसे दो श्लोक। रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः। तो यहाँ पर राम के वर्णन में हर जगह चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अंत में नमः शब्द आया है और वेधसे शब्द भी आया है। तो रामाय अर्थात राम के लिए राम भद्राय, जिनका दूसरा नाम रामभद्र भी है और रामचंद्र भी है और रघुनाथ भी है, तो राम के लिए नमस्कार है, रामभद्र के लिए नमस्कार है, रामचंद्र के लिए नमस्कार है और रघुनाथ के लिए नमस्कार है, नाथ के लिए नमस्कार है और सीतायाः पतये, तो सीता के पति के लिए भी नमस्कार है। यहाँ सीतायाः पतये, पति की भी चतुर्थी विभक्ति लगी, तो सीतायाः पतये नमः। लेकिन जब हम नमामि कहेंगे तो कर्म की अर्थात द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इसके लिए राम ही के संबंध में दूसरा श्लोक है, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। अर्थात जो आपदाओं का हरण करने वाला है, दातारम सर्वसंपदाम अर्थात सभी प्रकार की संपदा को देने वाला है, लोकाभिरामम लोगों को जिसमें आनंद लगे ऐसा जो श्रीराम है, इन्हें भूयो भूयो बारंबार नमामि अहम् मैं प्रणाम करती हूँ। और मित्रों ये दोनों श्लोक मैंने लिए हैं राम रक्षा स्तोत्र से, जो कि एक छोटा सा स्तोत्र है, करीब 30-40 श्लोकों का, इसे याद कर लो। तो यह माना जाता है कि जो तोतले बच्चे होते हैं उनकी वाणी इस स्तोत्र से शुद्ध हो जाती है। और अब अंत में एक पहेली भी मैं सुनाती हूँ। संस्कृत में पहेलियों की बहुत अच्छी प्रथा है और संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका कहते हैं, तो ये कितनी सुंदर प्रहेलिका है देखो, कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन वो पक्षीराज अर्थात गरुड़ नहीं है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी ही, त्रिनेत्रधारी है अर्थात उसकी तीन आँखें हैं लेकिन वह शूलपाणी अर्थात शंकर नहीं है, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वग अर्थात पेड़ की छाल और वही जिसके वस्त्र हैं ऐसा वह, तो पेड़ की छाल के वस्त्र पहने हुए है लेकिन वह कोई योगी पुरुष या सिद्ध पुरुष नहीं है, जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः, और जलम च बिभ्रन वो जल को रखता है अपने पास लेकिन न घटो न मेघः, न वो घड़ा है और न बादल है। तो इस प्रहेलिका का बहुत सुंदर उत्तर है और शायद तुम्हें समझ भी आ गया होगा कि ऐसा कौन है जो पेड़ के ऊपर भी रहता है, पेड़ की छाल पहनता है, तीन आँखें हैं और उसके अंदर जल भरा हुआ है, तो ऐसा एक फल है नारियल। तो ये उत्तर हो गया प्रहेलिका का और बस आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तुम पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो रेडियो मधुबन और मुस्कुराते रहो। नमस्कार।